एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल हर तरफ चर्चा में है, आर्थिक असमानता।
हाँ बिल्कुल,
मतलब अमीर और गरीब के बीच वो जो बढ़ती खाई है उसी पर।
और इस जरूरी मुद्दे को समझने के लिए हम आज देख रहे हैं फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी की एक अहम किताब,
द इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वालिटी। ये उनकी वो जो बहुत मशहूर किताब थी ना, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी।
हाँ हाँ।
उससे पहले आई थी, लेकिन उनके जो मुख्य विचार हैं उनकी नींव कहीं ना कहीं इसी किताब में दिख जाती है।
अच्छा, तो ये किताब असल में देखती क्या है?
हाँ।
मतलब समाज में पैसा, संपत्ति, ये सब बढ़ता कैसे है?
बिल्कुल। और ये सवाल कि क्यों कुछ लोग अब देखते हैं लगातार अमीर होते जाते हैं और बहुत सारे लोग पीछे छूट जाते हैं।
हाँ, और ये आजकल बहुत ही अहम सवाल है ना?
बहुत ज्यादा। और देखिए, पिकेटी की खास बात यह है कि वो सिर्फ किताबी सिद्धांत नहीं बताते।
अच्छा।
वो हमें असलियत दिखाते हैं, इतिहास के पन्नों से, ढेर सारे आंकड़ों से। वो इस आम सोच को भी चुनौती देते हैं कि भाई देश तरक्की करेगा तो सब अपने आप बराबर हो जाएंगे।
मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं होता
उनके हिसाब से, तो बिल्कुल नहीं। तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये असमानता है क्यों और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं आगे चलकर।
तो चलिए पहले ये जानते हैं कि ये थॉमस पिकेटी है कौन, मतलब जिन्होंने इतनी हलचल मचा दी है अर्थशास्त्र की दुनिया में।
हाँ जरूर। थॉमस पिकेटी फ्रांस के एक बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं। वो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं, और मजे की बात यह है कि इस स्कूल को शुरू करने वालों में वो खुद भी शामिल थे।
अरे वाह।
और उनकी पहचान ही उनके काम से है, आय और धन की असमानता पर, मतलब इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी।
और उनके काम करने का तरीका वो कैसे अलग है, क्या खास बात है उसमें?
देखिए, उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनका डेटा पर जोर।
अच्छा।
बल्कि लंबा ऐतिहासिक नजरिया। वो 100-200 साल पुराने टैक्स रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं।
सच में टैक्स रिकॉर्ड्स?
हाँ बिल्कुल। और इससे वो ऐसे पैटर्न, ऐसे ट्रेंड्स पकड़ पाते हैं जो छोटे समय के विश्लेषण में अक्सर छूट जाते हैं।
ये तो कमाल है। मतलब वो एक तरह से इतिहास के जासूस की तरह काम करते हैं, आर्थिक सुराग ढूंढते हुए।
हाँ कह सकते हैं। उनकी वो जो 2013 वाली किताब थी, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, वो दुनिया भर में बेस्ट सेलर बनी थी।
हाँ, उसका तो बहुत नाम सुना था।
लेकिन आज जिस किताब पर बात कर रहे हैं, द इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वालिटी, ये फ्रेंच में तो 1997 में ही आ गई थी।
ओ, काफी पहले।
हाँ, और ये उनके जो बड़े जटिल विचार है ना, उनको समझने के लिए बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु है और थोड़ी आसान भी है पढ़ने में।
तो उनका नजरिया अनोखा इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ नंबर नहीं देखते, वो आंकड़ों को इतिहास और समाज की कहानी से जोड़ते हैं।
एकदम सही। वो अर्थशास्त्र को सिर्फ एक तकनीकी विषय नहीं मानते, वो उसे राजनीति, समाज, इतिहास, इन सब के साथ मिलाकर देखते हैं।
और शायद इसीलिए वो उन पुरानी धारणाओं पर सवाल उठा पाते हैं जिन्हें हम अक्सर सच मान लेते हैं।
बिल्कुल। जैसे ये मान लेना कि बाजार है तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, सबको बराबर मिल जाएगा। पिकेटी दिखाते हैं कि मामला इतना सीधा नहीं है भाई।
तो फिर इस किताब द इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वालिटी का सार क्या है, मतलब मुख्य संदेश क्या देना चाहते हैं पिकेटी?
देखिए, पिकेटी का सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी तर्क यह है कि आर्थिक असमानता कोई कुदरती चीज नहीं है या सिर्फ टेक्नोलॉजी बदली इसलिए हो गया, ऐसा नहीं है।
अच्छा, तो फिर
ये पूंजीवाद के स्वभाव में ही कहीं गहरे बसा है। और इसे शक्ल कौन देता है? राजनीति, सामाजिक ताकतें, इतिहास, ये सब मिलकर।
मतलब असमानता तावतिक नहीं है बल्कि समाज और राजनीति उसे बनाते या बिगाड़ते हैं।
हाँ, काफी हद तक। पिकेटी उस उम्मीद पर सीधे सवाल उठाते हैं कि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो दौलत अपने आप सब में बराबर बढ़ जाएगी। वो कहते हैं ये मूल रूप से एक राजनैतिक मसला है।
राजनैतिक मसला कैसे?
भाई, समाज टैक्स कैसे लगाएगा, शिक्षा पर कितना खर्च करेगा, नियम कानून क्या होंगे, गरीबों की मदद के लिए क्या योजनाएं होंगी, इन सब नीतियों से ही तो तय होता है ना कि पैसा किसके पास कितना रहेगा।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है। इसका मतलब है कि अगर हम चाहें तो नीतियां बदलकर इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं।
बिल्कुल, यही उम्मीद भी है। उनका एक और बहुत अहम विचार है पैतृक पूंजीवाद का, पैट्रिमोनियल कैपिटलिज्म।
पैतृक पूंजीवाद, ये क्या होता है?
वो कहते हैं कि अगर सरकार सोच समझकर जानबूझकर दखल ना दे तो पूंजीवादी व्यवस्था का एक स्वाभाविक रुझान होता है।
किस तरफ?
इस तरफ कि जो विरासत में मिली हुई दौलत है और उस दौलत पर जो रिटर्न मिल रहा है, मतलब मुनाफा, ब्याज, किराया वगैरह।
हाँ, की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से।
हाँ बिल्कुल, यही उनका वो मशहूर आरजी वाला आइडिया है ना, उसकी जड़ें यही हैं।
आरजी, थोड़ा समझाएंगे इसे?
जरूर। यहाँ आर का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर मिलने वाले मुनाफे की दर, और जी है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यानी अर्थव्यवस्था के बढ़ने की दर।
ठीक है,
तो पिकेटी कहते हैं जब आर यानी पूंजी पर रिटर्न की दर जी यानी ग्रोथ रेट से ज्यादा होती है आरजी, तो पुरानी दौलत मतलब जो विरासत में मिली है या पहले से जमा है वो नई कमाई या देश की कुल आय से ज्यादा तेजी से बढ़ती है।
अच्छा,
तो खाई और चौड़ी होती जाती है, संकेंद्रण बढ़ता है। तो ये किताब हमें असमानता को समझने के लिए औजार देती हैं। ये क्यों है, इसे नापते कैसे हैं, कौन सी ताकतें इसे घटाती या बढ़ाती हैं।
तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि समाज, राजनीति, इतिहास और अर्थशास्त्र का एक मिला जुला विश्लेषण है।
एकदम।
चलिए तो किताब के अंदर थोड़ा और गहराई से चलते हैं। सुना है ये मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बटी हुई है।
हाँ, कह सकते हैं। जो पहला हिस्सा है वो बुनियादी बातों पर है, मतलब कॉन्सेप्ट्स और मेजरमेंट, अवधारणाएं और माप।
ठीक है,
यहाँ पिकेटी साफ करते हैं कि आय यानी इनकम और धन यानी वेल्थ में क्या फर्क है। आय वो है जो हम एक तय समय में कमाते हैं, सैलरी, मजदूरी, बिजनेस का मुनाफा वगैरह।
और धन वो है जो हमारे पास जमा है, जैसे घर, जमीन, बैंक बैलेंस, शेयर्स, है ना?
बिल्कुल। और पिकेटी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि धन का बंटवारा हमेशा हमेशा आय के बंटवारे से कहीं ज्यादा असमान होता है।
हमेशा मतलब कमाई में जितना फर्क है उससे कहीं ज्यादा फर्क जमा संपत्ति में होता है।
हाँ, यानी टॉप 1% या 10% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का जितना बड़ा हिस्सा होता है उतना बड़ा हिस्सा उनकी कुल सालाना आय का नहीं होता। धन ज्यादा केंद्रित होता है।
और इसे नापते कैसे हैं?
वो कुछ तरीकों का जिक्र करते हैं, जैसे जीनी कोएफिशिएंट, जो 0 से 1 के बीच का एक नंबर होता है। 0 मतलब पूरी बराबरी, 1 मतलब पूरी असमानता।
ठीक है।
और दशमक अनुपात भी, जैसे सबसे अमीर 10% लोग सबसे गरीब 10% लोगों से कितना गुना ज्यादा कमाते हैं या उनके पास कितनी गुना ज्यादा संपत्ति है। पिकेटी कहते हैं कि कई बार सिर्फ टॉप 1% या 10% के हिस्से को देखना भी बहुत कुछ बता देता है।
समझ गए, ये तो हुई नापने की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आपने कहा था वो बताता है कि ये असमानता पैदा कैसे होती है, इसके पीछे के तंत्र क्या है।
हाँ बिल्कुल, दूसरा हिस्सा इसी पर है, असमानता के तंत्र। इसमें पहले वो बात करते हैं श्रम आय की असमानता की, इनइक्वालिटी ऑफ लेबर इनकम, मतलब सैलरी, मजदूरी वगैरह में जो फर्क होता है।
अच्छा।
और यहीं पर उनका वो मशहूर कॉन्सेप्ट आता है, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के बीच दौड़, रेस बिटवीन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी।
शिक्षा और टेक्नोलॉजी के बीच रेस, ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है, ये क्या है?
हाँ है तो दिलचस्प। देखिए, वो कहते हैं कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो अक्सर कुछ खास तरह के हुनर या स्किल्स की मांग बढ़ा देती है।
ठीक है।
इससे क्या होता है कि जिनके पास वो स्किल्स हैं उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, और जिनके पास नहीं है उनकी या तो उतनी ही रहती है या कम हो जाती है। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड के बीच का फासला बढ़ सकता है। ये हुई टेक्नोलॉजी की तरफ से लगने वाली दौड़।
अच्छा, और शिक्षा?
दूसरी तरफ है शिक्षा। अगर शिक्षा का फैलाव होता है, ज्यादा लोग वो जरूरी स्किल्स सीख लेते हैं, तो स्किल्ड लोगों की सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, उनकी तनख्वाह पर दबाव पड़ता है और वो फासला कम हो सकता है। तो तनख्वाह में जो असमानता है वो इसी दौड़ का नतीजा है। टेक्नोलॉजी स्किल्स की मांग बढ़ाती है, शिक्षा उन स्किल्स की सप्लाई। कौन आगे निकलता है इससे तय होता है कि असमानता बढ़ेगी या घटेगी।
अरे वाह, मतलब अगर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से भागे और शिक्षा का सिस्टम पीछे रह जाए तो तनख्वाह का अंतर बढ़ता जाएगा।
हाँ, मोटे तौर पर यही उनका तर्क है। हालांकि वो ये भी साफ करते हैं कि सिर्फ यही एक कारण नहीं है।
और क्या है?
वो कहते हैं कि देशों के अपने नियम कानून, संस्थाएं जैसे लेबर यूनियन कितनी मजबूत हैं, मिनिमम वेज क्या है, टॉप एग्जीक्यूटिव की सैलरी पर कोई लगाम है या नहीं, ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती हैं।
अच्छा।
इन चीजों को सिर्फ स्किल या टेक्नोलॉजी से नहीं समझाया जा सकता, ये सामाजिक पसंद और ताकत के संतुलन को भी दिखाते हैं।
समझ गए। और इसी दूसरे हिस्से में वो पूंजी यानी वेल्थ की असमानता पर भी आते हैं। आपने कहा था कि पिकेटी मानते हैं कि ये ज्यादा बड़ा इंजन है असमानता का।
करते हैं। अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है और सबसे जरूरी पूंजी पर रिटर्न कितना मिल रहा है, यानी रेट ऑफ रिटर्न।
यहीं पे वो
आरजी वाली बात फिट होती है। एकदम, यही उसका असली मैदान है। जब पूंजी पर रिटर्न की औसत दर आर पूरी अर्थव्यवस्था की विकास दर जी से लगातार ज्यादा रहती है
तो
जिनके पास पहले से पूंजी है उनकी दौलत अपने आप बाकी समाज की औसत आय या देश की कुल आय से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। उन्हें कुछ खास करने की जरूरत भी नहीं पड़ती कई बार।
बस पैसा
पैसे को खींचता है।
हाँ, और तेजी से खींचता है जब आरजी हो। इससे अमीर और अमीर होते जाते हैं और धन ऊपर ही ऊपर सिमटता जाता है।
और इसमें विरासत मतलब इनहेरिटेंस का क्या रोल है? पुरखों से मिली जायदाद?
बहुत ही बड़ा रोल।
पिकेटी
विरासत पर काफी जोर देते हैं।
हेरिटेज।
वो कहते हैं कि जिन समाजों में आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी होती है, यानी जी कम होता है, वहां विरासत में मिली दौलत का महत्व बहुत बढ़ जाता है।
कैसे?
क्योंकि जब नई दौलत धीरे धीरे बन रही है, जी कम है, तो पुरानी जमा हुई दौलत ज्यादा हावी हो जाती है। तब समाज एक तरह का पैतृक समाज बन जाता है, जहां आपकी आर्थिक स्थिति आपकी मेहनत या काबिलियत से ज्यादा इस बात से तय होती है कि आप किस खानदान में पैदा हुए हैं, आपको विरासत में क्या मिला।
ओह।
वो दिखाते हैं कि कैसे पहले विश्व युद्ध से पहले यूरोप में यही हालत थी, विरासत का बोलबाला था। फिर युद्धों ने और बाद की टैक्स नीतियों ने इस पैटर्न को तोड़ा, पर वो चिंता जताते हैं कि कम ग्रोथ और पुरानी दौलत पर कम टैक्स के इस दौर में हम शायद फिर उसी तरफ बढ़ रहे हैं।
ये तो सच में सोचने वाली बात है कि मेहनत से ज्यादा जन्म मायने रखने लगे।
हाँ।
अब आते हैं किताब के तीसरे हिस्से पर। आपने कहा था ये पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन और सरकारी नीतियों पर बात करता है।
बिल्कुल, तीसरा हिस्सा इसी पर केंद्रित है, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक पॉलिसी। इसमें वो पहले पुनर्वितरण का एक संक्षिप्त इतिहास बताते हैं।
और यहीं वो कुज़्निट्ज़ कर्व की आलोचना करते हैं।
हाँ, यहीं पर कुज़्निट्ज़ कर्व, साइमन कुज़्निट्ज़ का वो आइडिया कि विकास के साथ असमानता पहले बढ़ती है फिर अपने आप कम हो जाती है, एक उल्टे यू की तरह।
हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है कि बस विकास करते जाओ, बराबरी अपने आप आ जाएगी।
लगता तो है, पर पिकेटी कहते हैं भाई साहब ऐसा हुआ नहीं था। वो आंकड़ों से दिखाते हैं कि 20वीं सदी के मध्य में, खासकर 1914 से 1970-80 के बीच, जो पश्चिमी देशों में असमानता में भारी कमी आई थी।
हाँ?
वो कोई शांतिपूर्ण ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं थी।
तो फिर क्या थी?
वो मुख्य लूट से दो विश्व युद्धों और महामंदी जैसे भयानक हिंसक आर्थिक और राजनीतिक झटकों का नतीजा थी। इन झटकों ने पुरानी जमा पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया था।
मतलब ये कमी विकास की वजह से नहीं बल्कि तबाही की वजह से आई।
काफी हद तक। हाँ, और सिर्फ तबाही नहीं, उसके बाद जो सरकारें आईं, उन्होंने जो नीतियां अपनाई, उनका भी बहुत बड़ा हाथ था।
कैसी नीतियां?
जैसे बहुत ज्यादा प्रगतिशील आयकर लगाना, मतलब अमीरों की आय पर बहुत ऊंची दर से टैक्स, और साथ ही विरासत पर भी भारी टैक्स लगाना।
अच्छा।
और दूसरी तरफ एक मजबूत कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, जिसमें सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन जैसी चीजों पर खूब खर्च करती थी। इन सब ने मिलकर असमानता को कम किया। तो ये सब राजनीतिक फैसले थे, कुज़्निट्ज़ का कोई कुदरती नियम नहीं।
बिल्कुल, द क्वेश्चन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन आखिरी हिस्सा इसी पर है। पिकेटी यहाँ प्रगतिशील आयकर और खास तौर पर मजबूत विरासत कर इनहेरिटेंस टैक्स जैसे उपायों का मूल्यांकन करते हैं।
विरासत कर पर उनका इतना जोर क्यों है?
क्योंकि वो मानते हैं कि ये सिर्फ सरकार के लिए पैसा जुटाने का जरिया नहीं है, ये एक तरीका है उस पैतृक पूंजीवाद को रोकने का, जहां दौलत पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ही परिवारों में जमा होती रहती है और बाकियों के लिए मौके कम हो जाते हैं। ये मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता आधारित समाज के लिए जरूरी है।
और सरकारी मदद और सुविधाओं के बारे में क्या कहते हैं?
वो दोनों को जरूरी मानते हैं। सामाजिक हस्तांतरण मतलब लोगों को सीधे नकद या सामान के रूप में मदद देना, और सार्वजनिक सेवाएं यानी सबके लिए अच्छी और सस्ती या मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह का इंतजाम करना।
दोनों क्यों जरूरी हैं?
क्योंकि सीधी मदद फौरन राहत देती है, गरीबी कम करती है, और अच्छी सार्वजनिक सेवाएं, खासकर शिक्षा, लोगों को भविष्य में बेहतर करने के काबिल बनाती हैं, अवसर की समानता बढ़ाती हैं। तो एक न्यायपूर्ण समाज के लिए दोनों चाहिए।
तो कुल मिला के पिकेटीज़ किताब में ये साबित कर रहे हैं कि असमानता हमारी अपनी पसंद नापसंद, हमारी चुनी हुई नीतियों का नतीजा है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं जिसे बदला ना जा सके।
बिल्कुल, यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली और उम्मीद जगाने वाला संदेश है शायद।
तो इस पूरी चर्चा से अगर हमें कुछ मुख्य बातें, कुछ की टेकअवेज निकालने हों, तो वो क्या होंगे? आपने शुरू में कहा था कि असमानता एक राजनीतिक और ऐतिहासिक चीज है, न कि सिर्फ आर्थिक। ये शायद सबसे पहली और जरूरी बात है।
हाँ, ये बुनियाद है। समाज जो नीतियां चुनेगा, असमानता का स्तर वैसा ही होगा। दूसरी अहम बात है पूंजी और श्रम के बीच का वो गहरा फर्क। तनख्वाह से होने वाली कमाई और संपत्ति से होने वाली कमाई के नियम अलग हैं। संपत्ति की असमानता कहीं ज्यादा गहरी और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली होती है।
और यही पिकेटी की वो बात याद आती है जो आपने पहले बताई थी।
कौन सी?
धन के वितरण का इतिहास हमेशा से गहरा राजनीतिक रहा है और इसे केवल आर्थिक तंत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता।
मतलब ये सिर्फ डिमांड सप्लाई का खेल नहीं है, ये नियमों, ताकत और राजनीतिक इच्छा शक्ति का खेल ज्यादा है।
बिल्कुल। और तीसरी बात वो शिक्षा और प्रौद्योगिकी के बीच दौड़ वाली थी।
हाँ।
जो तनख्वाह के फर्क को समझने में मदद करती है और ये दिखाती है कि सबके लिए अच्छी शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग कितनी जरूरी है।
सही कहा। शायद इससे जुड़ा उनका एक और विचार है जो आपने कोट किया था, वेतन असमानता के विकास को शिक्षा और प्रौद्योगिकी के बीच एक दौड़ के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। और ये बात आज AI और ऑटोमेशन के जमाने में और भी ज्यादा मौजू हो जाती है ना।
हाँ बिल्कुल। अगर नई तकनीकें कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचाती हैं और बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं तो ये दौड़ तो और मुश्किल हो जाएगी।
चौथी बात, वो आशावादी कुज़नेत्स कर्व का खंडन। ये याद रखना जरूरी है कि 20वीं सदी में जो असमानता में कमी आई थी वो एक ऐतिहासिक अपवाद थी जो खास परिस्थितियों और नीतियों की वजह से हुई थी, वो अपने आप नहीं हुआ था। इससे जुड़ा उनका कथन भी जोरदार था। विकसित देशों में 1914 और 1970 के बीच देखी गई असमानता में कमी मुख्य रूप से युद्ध और उसके कारण हुए हिंसक आर्थिक और राजनीतिक झटकों का परिणाम थी। ये हमें एक तरह से आगाह करता है कि अगर हम सचेत नहीं हुए तो चीजें अपने आप बेहतर नहीं होंगी।
और पांचवी बात, असमानता को कम करने में राज्य यानी सरकार की केंद्रीय भूमिका।
हाँ, प्रगतिशील टैक्स, कल्याणकारी योजनाएं, जब ये मजबूत थे तो समाज ज्यादा बराबर थे, जब ये कमजोर हुए असमानता फिर से बढ़ गई। और आखिरी छठी बात, विरासत का जबरदस्त महत्व। ये उस ख्याल को चुनौती देता है कि हमारा समाज पूरी तरह मेरिट यानी काबिलियत पर चलता है।
ये तो सोचने पर मजबूर करता है।
बिल्कुल।
ये सारे बिंदु वाकई बहुत अहम है, पर अब सवाल ये उठता है कि इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। मतलब एक आम इंसान इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकता है।
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये हमें एक ज्यादा जागरूक, एक ज्यादा सूचित नागरिक बनाता है।
वो कैसे?
जब हम अखबार में पढ़ते हैं या टीवी पर बहस सुनते हैं कि सरकार टैक्स घटा रही है या बढ़ा रही है, या शिक्षा पे इतना खर्च कर रही है, या किसी खास वर्ग को मदद दे रही है, तो हम सिर्फ उसे सुन नहीं लेते, हम पिकेटी के चश्मे से देख सकते हैं कि भाई इस नीति का असल में फायदा किसे मिलेगा, लॉन्ग टर्म में इसका अमीरी गरीबी की खाई पर क्या असर पड़ेगा।
हाँ, मतलब हम सिर्फ सतही बातों से आगे जाके सवाल पूछ सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं।
बिल्कुल। और शायद ये हमें अपनी निजी जिंदगी, अपने आर्थिक हकीकतों को भी बेहतर समझने में मदद करता है।
अच्छा, वो कैसे?
कई बार हमें लगता है ना कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? या कोई दूसरा कम मेहनत करके भी हमसे आगे कैसे निकल गया? पिकेटी का काम हमें दिखाता है कि यह सिर्फ हमारी निजी काबिलियत या कमी का मामला नहीं है, पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, विरासत में मिली संपत्ति कितनी मायने रखती है, पूंजी पर रिटर्न कितना मिल रहा है, ये सब बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
तो इससे शायद थोड़ी निराशा कम हो और हम बड़े मुद्दों पर ध्यान दें।
हाँ, शायद कम से कम ये समझने में मदद मिलती कि लड़ाई सिर्फ हमारी अकेली की नहीं है, और जो लोग नीतियां बनाते हैं या कंपनियों में बड़े पदों पर हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है।
उनके लिए कैसे?
उनके लिए ये एक ढांचा देता है पॉलिसी एनालिसिस का, कि किस तरह की टैक्स नीति बनानी चाहिए, शिक्षा में कैसा निवेश करना चाहिए, मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए, ये सब फैसले असमानता को कैसे प्रभावित करेंगे। ये सिर्फ GDP ग्रोथ बढ़ाने की बात नहीं है, ये भी देखने की बात है कि उस ग्रोथ का बंटवारा कैसे हो रहा है।
और जैसा आपने पहले कहा, ये मेरिट या काबिलियत वाले विचार पर भी दोबारा सोचने को मजबूर करता है।
हाँ, जब हम देखते हैं कि अमीर घरों के बच्चों को कितने सारे फायदे मिलते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा, जान पहचान का नेटवर्क, बिजनेस शुरू करने के लिए शुरुआती पैसा,
हाँ।
तो ये सवाल जरूर उठता है कि क्या सच में सबके लिए मौके बराबर हैं? शायद ये हमें उन नीतियों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करे जो बचपन से ही सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब बराबरी के मौके देने की कोशिश करती हैं।
सही कहा। ये अवसर की समानता को सिर्फ एक नारे से आगे ले जाकर हकीकत बनाने की बात करता है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो यही है कि असमानता कोई किस्मत का खेल या कोई प्राकृतिक नियम नहीं है, ये हमारे सामूहिक राजनीतिक फैसलों का नतीजा है। पिकेटी हमें इतिहास और आंकड़ों की मदद से इसे समझने की ताकत देते हैं ताकि हम शायद भविष्य में बेहतर फैसले ले सकें।
और मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये जानना था कि 20वीं सदी के बीच का वो दौर जिसे हम अक्सर स्वर्ण युग मान लेते हैं, कम असमानता वाला, वो कितना अनोखा और अस्थायी था। हम उसे नॉर्मल समझ लेते हैं,
हाँ।
पर पिकेटी दिखाते हैं कि वो खास हालात और बहुत जानबूझकर बनाई गई नीतियों का नतीजा था, और अब हम जिस तरह वापस पुरानी ऐतिहासिक ऊंचाइयों यानी बहुत ज़्यादा असमानता की तरफ लौट रहे हैं, वो वाकई एक चेतावनी है। वो आरजी वाली बात दिमाग में घूमती रहती है,
हाँ,
कि अगर हमने सचेत होकर सोच समझकर कुछ नहीं किया तो पूंजीवाद का शायद ये स्वाभाविक रुझान है कि वो दौलत को कुछ ही हाथों में समेटता रहेगा।
बिल्कुल, पिकेटी का काम हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि मुझे लगता है ये हमें एक बुनियादी बहस में हिस्सा लेने के लिए तैयार करता है। वो बहस ये है कि हम आखिर कैसा समाज चाहते हैं और उसे बनाने के लिए हम क्या कोशिशें करने को तैयार हैं। ये सवाल सिर्फ अर्थशास्त्रियों या नेताओं के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है।
सही कहा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।